नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से ये खास पेशकश है। इसका नाम है संपूर्ण योग। 21 डेज के इस योगा चैलेंज में दोस्तों हम हर दिन कुछ नया नया सीख रहे हैं। प्रयास ये है कि हम योग को उसके संपूर्ण स्वरूप में जाने, यानी फिजिकल योगा को जाने, उसके इमोशनल और मेंटल बेनिफिट्स को समझे, मानसिक स्वास्थ्य पर उसका जो असर है उसे हम जाने, और साथ साथ हम उसके आध्यात्मिक अर्थ को भी समझे, ताकि हम उसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक टूल जो है उसका हम इस्तेमाल करें अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए। तो हम भी इस प्रयास में आपको पहले योगासन पर ले चलते हैं, फिर उसके बाद बोध होता है और प्रश्नोत्तर होते हैं, जहां पर आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आज हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। अगर आप अभी से ही प्रश्न टाइप इन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में बीच बीच में दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट से प्रश्नोत्तर भी लेंगे। आखिर में हम सभी करेंगे मेडिटेशन, और ये एक संपूर्ण योग का फॉर्मेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप सभी का स्वागत है और तैयार हो जाइए आज की योगासन करने के लिए। आज के योगासन के लिए हमारे साथ योगाचार्य हरीश वैद्य जी जुड़ रहे हैं सीधे बड़ौदा से। आइए मिलते हैं उनसे और करते हैं आज का योगासन।
नमस्कार। वंदे मातरम। ओम शांति। मैं आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की कमेंट ये आई है कि भाई डायबिटीज वालों के लिए तो कुछ बताओ। तो आज हम डायबिटीज वालों के कुछ दो आसन लेके आएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतने ही इजी भी है। देखिए, ये है वक्रासन। वक्रासन में आप करके देखोगे ना हमारे साथ, तो बिल्कुल प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा लीवर की ओर, पेट की लेफ्ट और राइट की ओर, जहां एक तरफ लीवर है एक तरफ प्लीहा है। आपको निश्चित रूप से अग्न्याशय पर इसके बिल्कुल वेधक रिजल्ट मिलेंगे। जिनके अग्न्याशय का प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो गया है, शुगर बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल प्रोग्राम वेधक है। अच्छा, अभी कैसा करें आप, पहले तो नीचे बैठ जाइए शतरंज लेगा। अब रोज बरोज मैं नहीं बताऊंगा, आप शतरंज लेके नीचे ही बैठना है योग के विषय में। अच्छा, लेफ्ट पैर आप बिल्कुल लंबा रखें। पहले तो दंडासन की स्थिति हो, फिर लेफ्ट पैर लंबा रखें। राइट वाली एडी लेफ्ट के घुटने के इस ओर हो। अच्छा, अभी राइट हैंड उठाएंगे, जो पैर आपने मोड़ा है ना वो उठा के ऊपर से यहां तक ले जाएंगे। लेफ्ट पैर से यहां लेफ्ट हार्ट से सपोर्ट बढ़ेंगे और पीछे देखेंगे। देखिए आप कहां प्रेशर बनता है। जिनका B12 कम है ना, उनको तो यहां नस पर नस चढ़ जाएगी, इसलिए बिल्कुल सावचेती से करना। ओके, रिलैक्स, बनाना प्रेशर। पूरे पेट के हिस्से पर ज्यादा प्रेशर आएगा, एक पैर के नीचे वाले हिस्से में, खास करके जंघा और पिंडली के नीचे वाले हिस्से में बहुत प्रेशर बनेगा। इस खंड पर भी ज्यादा प्रेशर बनेगा। अच्छा, अभी राइट वाला पैर लंबा रखें, लेफ्ट वाली एडी राइट के घुटनों के उस ओर रखें। आपने देख लिया बहन ने कैसा किया है, जो पैर आपने मोड़ा है उसी हाथ को उठा के घुटनों के उस ओर ले जाना है, राइट हैंड से सपोर्ट लेके पीछे देखना है, इसी से प्रेशर यही बनेगा। ओके, मूल स्थिति पर वापस आइए। मुझे तो इनको अभिनंदन बार बार देना पड़ता है, क्योंकि हमारे योगालय में जो भी क्लास चलते थे, अभी तो कोरोना काल है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, इतनी कदकाठी में वो इतने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन भी कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग मोटे हैं ना, वो कोई बहाना मत बनाना कि हमारा शरीर इतना है तो हम नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल प्यार से करिए। अच्छा, अभी हम अर्धस मत्स्येन्द्रासन की ओर मुड़ेंगे, जो बिल्कुल रामबाण इलाज है शुगर का। वैसे तो शुगर के लिए और भी आसन है, मंडूकासन वगैरह कराते हैं, हो सके तो बीच में वो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अर्ध मत्स्येन्द्रासन की पोजीशन आप देख लें। से सपोर्ट ले और पीछे देखें, यहीं पर पूरा प्रेशर आएगा और यहीं पर पूरा प्रेशर आएगा। जब पैर बदलेंगे तो यहीं और यहीं प्रेशर आएगा। रिलैक्स। यह है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। इसी से आपको लीवर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, गर्भाशय के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, पकवाशय कमजोर है आपका, आंतों की गति मंद हो गई है, एक मैं उपाय बता देता हूं, जिनको आंतों की गति मंद हो गई है, मोशन की निकासी नहीं हो रही है, उसके लिए ऑक्जुलिक एसिड मेन दवा होती है। अगर आंतों को चलाना है, जैसे स्कूटर को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे आंतों को सर्पाकार रिदम में चलाना है तो उसके लिए ऑक्जुलिक एसिड चाहिए। और ऑक्जुलिक एसिड मिलता है टमाटर से, मिलता है फिर पालक से मिलता है। तो रोज भोजन के आधे घंटे पहले आप एक छोटा सा कप भर के 100 ग्राम या 150 ग्राम जितना पालक का रस पी लेंगे तो आपको आंतों की गति सुचारू रूप से काम करेगी। और अगर डबल फायदा चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड भी चाहिए, अगर आपको शरीर में कहीं भी कोई भी जगह ब्लॉकेज हो, कान खोल करके सुन लो, हार्ट में भी अगर ब्लॉकेज हो, पैरों में डीवीटी भी हो और बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी ब्लॉकेज हो, कान खोलकर सुन लो और मैं बहुत सभानता से बोल रहा हूं, तो रेड जूस और ग्रीन जूस का प्रयोग कीजिए। पालक और हरा धनिया है, लौकी है, ये सब ग्रीन जूस में आ जाते हैं। रेड जूस में आप अनार ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, बीट ले सकते हो। एक समय अगर आप रेड जूस लेंगे तो दूसरे समय आप ग्रीन जूस का प्रयोग कर सकते हो, तो इसके प्रयोग जरूर करना और इसके फीडबैक जरूर लिखना। अच्छा, इस विषय का पूरा श्रेय मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। भारत,
ये थे हमारे साथ हरीश वैद्य जी, जो बड़ौदा से जुड़े थे और हम सबको आज वक्रासन सिखाया और डायबिटीज के लिए जो आसन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं आज के बोध के लिए। यानी जब पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बात की तो उन्होंने सिर्फ योगासनों के बारे में बात नहीं की, उन्होंने संपूर्ण योग की बात की है। आइए आज उसी के एक और विषय पर, यानी नियम के सूत्र पर हम चर्चा करते हैं और एक नए नियम को समझते हैं। हमारे साथ इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए वीणा दीदी जी जुड़ रहे हैं, आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
नमस्कार, ओम शांति।
जब हम योग के अलग अलग सूत्रों के बारे में समझते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमको मिल रही है और उसको लाइफ में कहाँ यूज करना है ये भी पता चल रहा है। यूजेस को और एप्लीकेशंस को जब हम समझते हैं तब लगता है कि हाँ, योग सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं है, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, ये हम समझ रहे थे। और आपने तप के बारे में हमें बताया तो तप से हमने बहुत कुछ सीखा कि तपस्या कितनी इम्पोर्टेंट है और किस किस प्रकार की तपस्याएं हम कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने समझा। तो कल के विषय पर तो हमने बहुत अच्छी जानकारी आपसे ली है, तो आज भी आप आज के विषय पर हमारे सभी साथियों को बोध कराएं। आपके बोध।
ओम शांति। योगेश्वर परमात्मा के प्यार भरी यादों में उपस्थित होकर हम सभी अष्टांग योग या संपूर्ण योग, जिसको हम कहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए संपूर्ण योग बहुत जरूरी है। होलिस्टिक हेल्थ है तो ऑलराउंड योगा या कंप्लीट योगा जिसको हम कहते हैं उसका भी हमें अभ्यास करना आवश्यक है। वैसे आज का नियम है हमारा आत्मनिवेदन, पांचवा नियम है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। आत्मनिवेदन को कई जगह पर ईश्वर प्रणिधान भी कहा गया है। दोनों शब्दों का उपयोगिता हम पाते हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। उसी सिलसिले में ये दोनों का लगभग अर्थ एक ही है, आत्मनिवेदन या ईश्वर प्रणिधान। वैसे हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नम विध की भक्ति बहुत फेमस है, नौधा भक्ति जिसको कहते हैं। तो नौधा भक्ति का नौवां चरण जो है वो भी आत्मनिवेदन, जैसे कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन दास्य सख्य और नौवां है आत्मनिवेदन। देखिए सनातन संस्कृति में पतंजलि हो या कोई भी है ना, जिसने भी मानव जीवन की संपूर्णता की या संपूर्ण सुख जीवन की पूर्ण जीवन की जीवन के पूर्णत्व के बारे में बातें की हैं, शास्त्रों के अनुसार हो वेदों के अनुसार हो या श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हो या फिर पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार हो, उसके अनुसार ये जो नवविध की भक्ति की स्टेप्स हम देखते थे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवना, उसके बाद अर्चना वंदना दास्य सख्य फ्रेंडशिप भगवान के साथ जो खुदा दोस्त की कहानियां हम सुनते आए, जब हम भगवान के इतने करीब हो जाते हैं हमारे अंदर भगवान के सामने रखने के लिए कोई भी पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपने आप को छिपाते नहीं है, जब ऐसे लेवल पे हम आ जाते हैं तो हमें आत्मनिवेदन की स्थिति तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। ये आत्मनिवेदन या ईश्वर प्रणिधान इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे संस्कृति में नमस्कार करने की जो प्रथा है, नमस्कार करते समय हम क्या करते हैं, पांचों उंगलियां ऐसे मिलाते हैं और ऐसे अंगूठे को भ्रुकुटी से लगाते हैं, सिर झुकाते हैं, फिर ऐसे नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब है आत्मनिवेदन, है ना। ये रूढ़िवाद में या परंपरागत हम ये सिस्टम को अपनाते आए, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तेरा है, लेकिन हमने ये प्रथा बनाए रखा, लेकिन अनुभव में कि मेरा सब कुछ तेरा है, खुद को भगवान के सामने समर्पित करने की जो भावनाएं होनी चाहिए थी कहीं तो हम पीछे रह गए। इसमें भी नमस्कार में अष्टांग नमस्कार या दीर्घ दंडवत नमस्कार की जो परंपरा चली आती है, पूर्ण तरह से परमात्मा के सामने खुद को शरणागत कर देना, शरणागति की महसूस करना जिसको समर्पण कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में कुर्बानी भी कहते हैं और कुछ शब्द हम यूं भी सुनते हैं कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, ये भी हम सुनते आए हैं, सदियों से ये हम सुनते आए हैं। इसलिए जो हमें कर्म क्षेत्र मिला है इसे भगवान का दिया हुआ सेवा क्षेत्र समझकर, जैसे कि हम शब्द की उपयोगिता तो बहुत अच्छी करते हैं कि हमारी कर्म ही पूजा है, हम अलग से भगवान का ध्यान नहीं करते, जो हम कर्म करते हैं वही हमारी पूजा है। ठीक है, अगर हमारी कर्म ही पूजा है तो क्या कर्म करते समय हमें ये याद रहता है कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं भगवान से मिली है? आजकल ये जो वर्क इज वर्शिप है ना, ये कुछ बदल गया है। वर्क इज वर्शिप नहीं, वर्क बिकम वॉरशिप। संघर्ष हो रहा है अपने आप से, जैसे कि हम लड़ रहे हैं खुद से। ऐसे समय में संपूर्ण योग को सही तरीके से जानकर खुद को भगवान के सामने समर्पण करने के जो विधि है, जिसको ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं, कि खुद को सेल्फ को भगवान के सामने समर्पण करना। कई बार हमारा ईगो या हमारे पोजीशंस आड़े आ जाते हैं, जिसके लिए कहते हैं बॉडी कॉन्शियस के कारण हम भगवान से भी लड़ पड़ते हैं। कि हम सोचते हैं हम भगवान से भी बड़े हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर शब्द है आत्मनिवेदना। इससे थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए भी हम इसकी वास्तविकता को समझने का जरूर प्रयास करेंगे। पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। इस पांच तत्वों से बने हुए शरीर में एक चेतन सत्ता निवास करती है जिसका नाम आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसके चले जाने पर, किसी की मृत्यु पर हम दिया जलाते हैं। आत्मा एक ज्योति स्वरूप है। ये डिफरेंस शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को जानकर खुद को इस देह भाव से थोड़ा हटाकर खुद को भगवान के सामने अर्पण करना, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा दिया हुआ अमानत है मेरे पास, इसको मैं कार्य में लगा रही हूं, ये जो भाव हमारे अंदर आना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? एक तो हमारे अंदर जो ईगो है ना, वो चला जाता है। आत्मनिवेदन करने से, जैसे कि मैंने नवधा भक्ति की बातें आपको सुनाई, पहले हम सुनते हैं, उसका गान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, भगवान की पाद सेवना करते, अर्चना वंदना करते हैं, हम कहते हैं हम आपके दास है, ये सारी भावनाएं भक्ति में चली आती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? भगवान के साथ खुद को समान रूप में अनुभव करना, या भगवान को साथी बना लेना, दोस्त बना लेना, और भगवान के सामने खुद को जैसे है जो है खोल के रख देना। ट्रांसपेरेंसी बिटवीन मी एंड गॉड, है ना, मैं और भगवान के बीच में एक पारदर्शिता हो। संपूर्ण समर्पणता जब हो जाती है तो हम हल्के हो जाते हैं। सिर पे जो बोझ लेके हम घूमते हैं ना, ये करना ये करना है, जिस बोझ के कारण स्ट्रेस फील करते, टेंशन फील करते हैं, वो सारा हम दूर अनुभव करेंगे खुद से, माना हल्के महसूस करेंगे, शीतल महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे। इसके लिए खुद को अच्छी तरह से जानकर, है ना, सोल इस सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज, है ना, आत्मा में सब कुछ है, सब मूल्य आत्मा के अंदर है, लेकिन उन मूल्यों को पहचान कर, खुद को अच्छी तरह से जानकर, जो भी अंदर है वो सब ईश्वर का प्रसाद मानकर, मैंने किया, मैंने कमाया। आज दुनिया में जो क्लैशेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप क्लैशेस है, खुद से खुद का क्लैशेस है, ये सब का कारण है ईगो। आज फैमिलीज बिगड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उसका कारण है ईगो। इसलिए भगवान ने हमें ये समझाया है, आत्मनिवेदन करने के लिए हमें आत्मा को, और जिसके साथ हमें खुद को निवेदन करना है, उसे भी जानना है। बिना जाने किसी के सामने तो हम समर्पित नहीं हो सकते, और जो भगवान ने हमें दिया है उसका हम कद्र करें। छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक बार एक संत ने पारस मणि दिया किसी एक भक्त को, और उस भक्त को कहा, मैं लौटाता हूँ, ले जाता हूँ, तब तक जितना चाहिए इस पारस मणि का उपयोग कर लो। पारस मणि वो चीज थी, लोहे से लगाने से वो सोना बन जाता था, लेकिन वो जो भक्त था इतना आलसी था, उसके घर में थोड़ा ही लोहा था, उससे उसको स्पर्श किया तो वो लोहा सोना बन गया। फिर उसने सोचा, मैं दुकान जाके थोड़ा सा और लोहा ले आता हूँ, गया, थोड़ा महंगा महसूस हुआ, सोचा जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। ऐसे करते करते, टालते टालते, एक दिन साधु वापस आ गया, इसने ना लोहा खरीदा और लोहे के या पारस के स्पर्श से सोना नहीं बना पाया। फिर उसने समय मांगा तो साधु ने कहा, जो मिला था उसमें तुमने कुछ नहीं कमाया, अब फिर समय नहीं मिलेगा, जीवन में बीते समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए जिंदगी के इस मोड में, जब हमारे सामने चारों ओर पेंडेमिक है, चारों ओर परेशानियां हैं, अब हम न टाले कि बुढ़ापे में करेंगे, नहीं, ये सही वक्त है खुद को भगवान के सामने समर्पण करने का। हम जैसे हैं, हम भगवान के संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, इस बात को याद रख के, खुद को भगवान के सामने जब अर्पण करते हैं तो हमारे लिए भगवान जिम्मेवार हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब हम खुद को भगवान के सामने कंप्लीट अर्पण कर देते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते, बेफिक्र हो जाते हैं, परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। आजकल जो हम सब कुछ अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, जिसके कारण टेंशन, भय, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ये सारी हम अनुभव जो कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन सब चीजों से बाहर निकलने की ये जो विधि है, भगवान जो दाता है, इस दुनिया का रचयिता है, उसके सामने खुद को अर्पण करें, है ना। जब हम किसी के सामने अर्पण हो जाते हैं, भैया मेरे से तो नहीं होगा, तुम मेरी सहायता करो, तो कोई भी उठ के आ जाता है दुनिया में, तो भगवान है, हमारे समर्पणता से वो हमारा साथी जरूर बनेगा। जैसे देखिए, योगासन करने के समय हम योग गुरु जो हमें सिखाते उनके सामने अर्पण रहते हैं, अर्थात वो जैसे कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। शरीर के अंग जहां रखना है, जैसे मोड़ना है, ये जैसे वे सिखाते वैसे ही करते, मन चाहे रीति से नहीं करते, है ना। योगासन गाइडेड सीखना चाहिए, ऐसे लोग कहते, गुरु से सीखना चाहिए, योगाचार्य से सीखना चाहिए। तो आत्मनिवेदन भी, हम भगवान के सामने जब खुद को आत्मनिवेदन या अर्पण करना चाहते तो हम खुद को भगवान से जुड़े रखें, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम खुद को भगवान के सामने पेश करें। इससे क्या होगा, अंदर में जो चीजें हम भर के रखे हैं, ज्यादातर हम अपने अंदर नेगेटिविटी को ही भर के रखते हैं, जिसको भूलना चाहिए वो हम संभाल के रखते हैं, जिन चीजों को याद रखना चाहिए उन चीजों को हम भूल जाते हैं। ये मानव की आम आदत है, इसलिए मनुष्य को, हर मनुष्य आत्मा को जो ये अंतिम जन्म मिला है, सुंदर जीवन मिला है, इस जन्म में जितने भी परेशानियां क्यों ना हो, कोई भी समस्या हो, तबीयत खराब है, ठीक है, सब कुछ भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। घर में कोई संघर्ष है, उसे भी भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। अपने दिमाग भगवान के कहने के अनुसार जब हम चलाना सीखते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें हम अपने जीवन में भगवान के सामने अर्पण करने की जो विधि है, इसको सही तरीके से सीखें। हमने भगवान के सामने बहुत सारी मांगे रखी है ना, जाने अनजाने में। बच्चे चाहते थे स्कूल में हॉलीडेज हो, देखिए कितना लंबा हॉलीडेज हो गया। स्टूडेंट्स चाहते थे एग्जाम्स ना हो, देखिए एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं। घर वाले, महिलाएं चाहते थे पति हमें ज्यादा समय दे, देखिए पूरा दिन घर में बैठे हुए हैं। और क्या चाहते थे पेरेंट्स, बच्चे हमारे साथ रहे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सभी घर में ही है। हमने जो जो संकल्प किया वो सारे संकल्प भगवान के पास सदैव पहुंचते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। जब उसकी पूरी होती है ना, उसको फेस करना बहुत सफल हो जाते हैं उसमें। इसलिए आज से संभाल के संकल्प करें, सब कुछ भगवान के सामने समर्पण करें। हम जो भी नेगेटिव संकल्प करते हैं वो भी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए आत्मनिवेदन जो है, भगवान के पास सच्चे दिल से, शुद्ध मन से खुद को भगवान के सामने अर्पण करें, भगवान के बताए हुए रास्तों पर खुद को चलने के लिए तैयार करें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आत्मनिवेदन के शब्द का अर्थ समझाया। बहुत बार हम अपने आप को ईश्वर जब कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमेशा हम कुछ डिमांड लेके, कुछ मांगने के लिए चले जाते हैं और हम अपने आप को नीच पापी ये कहते हैं। बट आपने आज बताया कि ईश्वर को साथी बना लेना, ये आत्मनिवेदन का एक बहुत ही सुंदर प्रारूप है। और जैसे कुर्बानी के बारे में आपने बात कही, यहाँ कुर्बानी किसी फिजिकल चीज की नहीं मगर अपने ईगो की कुर्बानी है, खुद ब खुद अपने आप को ईश्वर पर कुर्बान करना। जैसे किसी के प्यार में हम कहते हैं कि हम किसी के प्यार में कुर्बान हो गए, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम मेरापन सब कुछ छोड़कर किसी और के कहे हुए बात पर चल पड़ते हैं। और जैसे आपने ये भी कहा कि हम ईश्वर के समान है ये समझ के चले, ईश्वर के हम संतान है, तो बहुत बार हमें लगता है कि हम क्या भगवान को साथी बना सकते हैं। वो बात बहुत खूबसूरत याद आती है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। तो ये बात बताती है कि ईश्वर से पर्दा नहीं है, वो हमारे साथ है, इस बात को समझते हुए उसे साथी बनाते हुए आगे चलें। और शरणागति की आपने बात ये बताई कि जैसे हम योगाचार्य हरीश वैद्य जी से सीख रहे थे, तो जैसे जैसे बता रहे थे तो उनके डायरेक्शंस पर चल रहे थे। और आत्मनिवेदन करना भी शायद यही स्वरूप है कि ईश्वर जो कुछ भी कहे, ईश्वर की शिक्षाओं पर चलते रहना, ये आत्मनिवेदन का स्वरूप है। हमारे कुछ साथियों ने प्रश्न पूछे हैं दीदी, उन प्रश्नों के लिए मैं आपसे उत्तर लेना चाहूंगा। तो हमारे एक साथी ने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ प्रश्न लिखना चाहते हैं तो उन प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी आप देख रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सीधे वहां से लेंगे और स्क्रीन पर यहां दिखाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आया है, तो उस प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न आया है उसमें एक चीज ये कहा जाता है कि जब हम परमात्मा को अपने आप को अर्पित करने की बात करते हैं, आत्मनिवेदन करने की बात करते हैं, बहुत बार हमें याद आता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम अनकंडीशनली दे नहीं पाते। तो पवित्र मजूमदार लिखते हैं, इफ वी डोंट लर्न अनकंडीशनल लव, वी डोंट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, इज इट नॉट। तो जैसे हम परमात्मा से भी अगर कोई चीज हम आत्मनिवेदन की जब बात करते हैं, तो हम बहुत बार परमात्मा को कुछ अर्पित भी कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में कुछ चाहिए होता है, उसी उद्देश्य से हम करते हैं कि भगवान ये चढ़ावा करवा दिया, ये प्रसाद लगवा दिया आपको, आप हमारे जीवन में ये कर दो, ये हो जाए, बच्चों का ये कर देना, हमारा ये लड़का पास हो जाए, हमारी बच्ची की ये हो जाए। तो ऐसी चीजें हम करते हैं तो वो अनकंडीशनल नहीं होता। तो वो अनकंडीशनैलिटी कैसे ले आए, हमारे रिश्तों में भी हम अनकंडीशनल नहीं हो पाते, तो ऐसे में आत्मनिवेदन के सही स्वरूप के बारे में आप बताएं।
जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं भगवान दाता भी है और पिता भी है, और पिता से बच्चों को कुछ
क्वेश्चन स्क्रीन पर है,
बच्चों को पिता से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, और भगवान को जब हम पिता के स्वरूप में या सखा के स्वरूप में देखते हैं, वहां भी मांगने की जरूरत नहीं होती है, हक होता है हमारा, सब कुछ हमें मिल सकता है। इसलिए एक तो ट्रस्ट जिसकी बातें यहाँ पर हो रही थी कि आपस में अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, और हम भगवान की ओर आत्मनिवेदन करें, देखिए दिखावे की भक्ति अलग है, आत्मनिवेदन या ईश्वर प्रणिधान का एक अर्थ है श्रद्धा, प्यार और सम्मान। खुद के ऊपर अगर सम्मान नहीं होगा तो हम भगवान के सामने अपने आप को अच्छी तरह से पेश भी नहीं कर सकेंगे, संबंध भी नहीं जोड़ सकेंगे। जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है उसका दुनिया में कोई रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो नहीं बन जाए, जब सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो बन जाता है ना, तब हमारी अनकंडीशनल लव टूट जाती है और दूसरों से हम सब कुछ डिमांड करने लगते हैं, जबकि दूसरों से प्यार लेना, हम अगर प्यार करेंगे तो इको है, ऑटोमेटिकली हमें प्यार मिलता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है आत्मनिवेदन में, खुद को साफ रखे, स्वच्छ रखे, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं हो। जब भगवान के साथ हमारा ट्रांसपेरेंट रिश्ता होता है, केवल दिखावे का नहीं, भय का नहीं, जब भगवान के साथ ट्रांसपेरेंट रिश्ता होता है तो हमारे आपसी संबंधों में भी प्यार और सम्मान बनाए रखना आसान हो जाता है। जब हम भगवान के सामने भी दिखावा करते हैं और दुनिया के सामने, तो हम अपने आप को इगोइस्टिक महसूस करते हैं। इसीलिए संबंधों को ठीक करना है तो यहाँ का संबंध पहले ठीक करें हम, और खुद का संबंध भी ठीक करें, है ना। जो भी हमें मिला है भगवान की देन है, ये अगर हमारी स्मृति में रहता है तो जिस भी व्यक्ति हमारे साथ है सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान ने ये पूरे यूनिवर्स को एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था जिसको कहते हैं, छोटे छोटे परिवारों में बटा है, इस छोटे छोटे परिवारों को संभालना हमारी जिम्मेवारी है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। जब हमारी ये सोच बदल जाती है आत्मनिवेदन के अनुभव से, तब हमारे अंदर अनकंडीशनल लव कहे, रेस्पेक्ट कहे, आपसी भाईचारा कहे, ये सब आसानी से हो सकता है। यहां से बाहर से ठीक नहीं करना है, पहले अंदर से ठीक करना है ना। अंदर ठीक होगा तो बाहर ऑटोमेटिकली ठीक होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लहा लेकिन हम क्या सोचते हैं, दुनिया के रिश्ते को पहले ठीक कर लेते फिर भगवान से ठीक करते हैं। दिस इज नॉट द वे, ये विधान नहीं है। विधान है हम यहां से संबंध ठीक करें, तब यहां का संबंध ऑटोमेटिकली ठीक होगा।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई दीदी कि हम अनकंडीशनल लव लोगों में, परिवारों में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारे रिश्तों में हम उन्हें लाने की कोशिश करते हैं, और हम एक विरोधाभास में थे कि भाई हम वहां वैसे करने जाएंगे और फिर परमात्मा से आत्मनिवेदन होगा, तो एक्चुअल में उसका ऑपोजिट है। अगर हम परमात्मा से आत्मनिवेदन करते हैं तो जो हमारे रिश्ते हैं, परिवार है, साथी है, जॉब है, सब चीज को हम ईश्वर की देन समझकर उनके खुशी के लिए जब हम करने लगते हैं तो सारी चीजें आसान होने लगती हैं, और वो भाव हमें भी ज्यादा खुशी देता है और दूसरों को भी ज्यादा खुशी देता है। विवेक वाघेला हमारे साथ हैं और विवेक YouTube पर प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू थिंक ओनली अबाउट मी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जब स्वचिंतन की हम बात करते हैं, अपने स्वयं के चिंतन के ऊपर जब ध्यान में बताया जाता है ऐसा, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारी अलग अलग ख्याल आते हैं, विचार चलते हैं, तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस हम स्वचिंतन कैसे करें, ऐसा विवेक पूछते हैं।
हाँ, कल भी हमने ये बातें की थी कि मन में दूसरे दूसरे विचार बीच में आना कोई गलती या अपराध नहीं है। मन का काम है सोचना, जो जो फीडबैक हमने दे रखा है वो सब बीच बीच में आएगा, लेकिन जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो थॉट्स स्ट्रांगली हमारे कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। इसलिए खुद के बारे में सोचना मना ऐसा नहीं है कि बीच में कोई हमारे संस्कार या कोई भी संकल्प नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन उनके ऊपर आप अटेंशन नहीं दीजिए ना। जैसे कि हम रास्ते चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अटेंशन रहता है ना गाड़ी चलाते समय, रोड रूल्स फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, मंजिल पर पहुंचना है, आसपास में बहुत सारे सीन्स हम देखते हैं, देखते हुए वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, ट्रैफिक को, रोड को अच्छी तरह से, गाड़ी को भी मेंटेन करना है, ये हम सभी को आदत है। इसी तरह हम भी ये शरीर चला रहे हैं और हमारे मन भी हमारे ऑर्डर को मान रहा है। ये साइड सीन्स बहुत आएंगे, लेकिन इन साइड सीन्स के प्रभाव में हम ना आए, ये तब हो सकता है जब हमें खुद के बारे में इतना इंपॉर्टेंस देना आता है। सेल्फ लव जिसको कहते हैं, सेल्फ लव नेगेटिव भाषा में नहीं, लेकिन जब खुद के ऊपर, खुद को बदलने पर, खुद को शक्तिशाली बनाने पर हमारा अटेंशन ज्यादा रहता है, तब कोई भी चीज आए दिखे उसका प्रभाव हमारे स्थिति पर नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगी, यह फिर भी प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बीच बीच में खेल लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। म्यूजिक लगा भी रहा हो लेकिन बंदा अच्छी तरह से पढ़ लेता है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी समझ में आ जाती है। बस यही बात है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर प्रश्नों के उत्तर मिले हैं और बहुत सारे दोस्तों ने इन उत्तरों को अप्रिशिएट भी किया है। बहुत सारे लोग फीडबैक भी लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से आत्मसमर्पण का एक्सप्लेनेशन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ भी फीडबैक लिखना चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिखें और हम आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक्स भी पढ़ना चाहेंगे। आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं उसी आधार पर, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो हम उसमें चेंजेस या जो मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि 21 डेज का ये योगा चैलेंज है और आज हम 10वें दिन तक पहुंचे हैं, तो बहुत कुछ और बेहतर किया जा सकता है। आपके फीडबैक्स, आखिरकार ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपके फीडबैक्स हमें हेल्प करेंगे इसे बेहतर करने में। दीदी, आज आप खास हमारे साथ जुड़े और हमें बोध दिया आज का, और साथ साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार,
शांति।
दोस्तों, कुछ दोस्तों ने हमें फीडबैक दिया है और कल से 4 दिन के लिए हम योगासनों के विषय पर जानकारी लेंगे। हर दिन हरीश वैद्य जी योगाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह शाम जब भी आप योगासन कर सकते हैं तब आप इन आसनों को सीख सकते हैं। और पिछले 9 दिनों में आपने एक एक दिन कभी दो दो आसन सीखे हैं, किसी दिन एक आसन को सीखा है, तो आपके पास एक कलेक्शन हो गया है आसनों का, जिन आसनों को, जिन योगासनों को आप कर सकते हैं। हर दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा हम समझते हैं। अगर फिर भी योगासना एज अ होल को समझने के लिए, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल योगा का एस्पेक्ट है, योगासन का एस्पेक्ट है, उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कल से 4 दिनों के लिए यानी 11वें से 14 दिन के बीच में हमारे साथ हरीश वैद्य जी हर दिन जुड़ेंगे। 15 मिनट का बोध होगा और फिर प्रश्नोत्तर होंगे। तो आप भी उनसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, उनसे प्रश्नोत्तर, और वो आपके सवालों का जवाब भी देंगे। हमारे एक साथी आर्य ने कहा था कि हरीश वैद्य जी से अगर हम योग सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं। कल आर्य आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कल के प्रोग्राम में हरीश वैद्य जी आएंगे, उनसे रूबरू आप बात कर सकते हैं। हम उनके सामने भी ये प्रश्न रखेंगे और आप 4 दिन के लिए योगासनों को सीख भी सकते हैं इन डिटेल। तो कल से योगासन स्पेसिफिकली के ऊपर बातचीत भी होगी, और हर दिन जैसे हम फिजिकल योगासना सीखते हैं शुरुआत में, शुरुआत के 5-7 मिनट हम योगासना सीखेंगे। दोस्तों वक्त हो रहा है अभी मेडिटेशन करने का, और मेडिटेशन करने के लिए आज हमारे साथ राजयोगिनी ज्योति दीदी जी जुड़ रहे हैं संभलपुर से लाइव, और हमें अगले 5 मिनट के लिए वो मेडिटेशन कराएंगे। कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है जहां पर हम जो कुछ भी सुन चुके हैं उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं राजयोग ध्यान से, मेडिटेशन से। तो आइए करते हैं राजयोग। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
ओम शांति
जी, स्वागत है दीदी। अब आप हमारे सभी साथियों को मेडिटेशन कराएं अगले 5 मिनट के लिए।
जी, ओम शांति। अभी हम सब कुछ क्षण के लिए एकाग्रता पूर्वक बैठे। ये मेडिटेशन मन से पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार को स्थान देना है। यह आत्मनिवेदन अर्थात आत्मसमर्पण परमात्मा के समक्ष करना है। अभी आप सब लोग अपनी आंखें खुली रखें, अगर आपको कोई असुविधा नहीं है, या आंखें बंद भी कर सकते हैं। आप मन को वो सोच देंगे जो हम आपको बताएंगे, और उस सोच के हिसाब से अनुभव भी करेंगे, उस सोच को फील करेंगे। पूर्ण एकाग्र चित्त से वही सोचना है, वही महसूस करना है। आज की विषय वस्तु के अनुसार आत्मसमर्पण करेंगे परमात्मा के समक्ष, और अपनी अंतर आत्मा की सौंदर्यता को अनुभव करेंगे। जैसे दीदी जी ने कहा कि जब अंतर आत्मा की सौंदर्यता बढ़ती है तो बाह्य चीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो इसीलिए अभी हम कुछ क्षण यह अनुभव करेंगे आंतरिक सौंदर्यता को। तो पूरा रिलैक्स हो जाइए, बड़ी से एक लंबी सांस भरिए अपने अंदर और छोड़ दीजिए। और अभी अपनी भ्रुकुटी में देखिए, दोनों भ्रुलताओं के बीच एक जगमगाता सितारा चमक रहा है। उसको अपने मन की आंख से या कल्पना के नेत्र से निहारिए। बहुत सुंदर चमकता हुआ एक सितारा मणि के जैसे। जैसे एक डायमंड चमकता है, डेजलिंग करता है, उसकी किरणें चारों तरफ बिखर रहे हैं। अपनी भ्रुकुटी में ही देखते रहिए। मैं यह चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। कुछ आत्मा के अंदर शांति, आनंद, सुख समाई हुई है। फील करें वो जो चमकता हुआ हीरा है, उस हीरे से जैसे आनंद की किरणें चहुं और बिखर रहे हैं, उस हीरे से जो किरणें निकल रहे हैं वो आनंद की किरणें हैं। फील करें उस आनंद की किरणों को। अब महसूस करें खुशी और शांति की किरणों को। यही खुशी आपकी आंतरिक सौंदर्यता है। मन मन कि मैं आत्मा, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। अवसर करें कि मेरे पिता परमात्मा मेरे समक्ष तेजोमय स्वरूप में विराजमान, कृपा के स्वरूप वो भी एक लाइट। मैं उनको अपने कल्पना के नेत्र से देख रही हूँ। अब अपने मन से, दिल से उनके आगे अपने आप को समर्पण करें। उनसे ऐसे बातें करें, मैं आपकी सुपुत्र हूं। मैं आत्मा आपके ही संतान हूं। मैं जो है जैसी हूं रखता ही हूं। आप मेरे तन और मन को जैसे निर्देश देंगे मैं ऐसे ही परिचालन करूंगी। मैं आपके समक्ष संपूर्ण रूप से समर्पित। दिल से समर्पित, सच्चे मन से, सच्चे दिल से समर्पित हो जाए। पूरा सब कुछ परमात्मा को सौंप दे। अपने दुख, दर्द, परेशानी, अपने संबंध, अपने धन दौलत सब प्रभु को अर्पण कर दे। फील करें हल्का, कोई भारीपन बोझ न रखें, पूरा हल्का हो जाए। जैसे एक बच्चा कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने वाला उसके कारण इसको तो बच्चे की तरह प्रभु के सामने संपूर्ण समर्पण हो जाए। आपसे सारे परेशानी, दुख, दर्द, सारे संबंधों की केयर परमात्मा कर रहे हैं। आप निश्चिंत अपनी तरफ मेरे पिता परमात्मा आनंद की चादर है। एकाग्रता से अनुभव करें इस परम ज्योति महाज्योति जो मेरे समक्ष विराजमान है, उनके वो आनंद के किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश करें। मैं उन किरणों को महसूस करूं। संपूर्ण और आनंद का महसूस करो। अब महसूस करें उन किरणों में पवित्रता की शक्ति है और वो किरणें इस आत्मा को और मेरे शरीर को इसको पवित्र बना रहे हैं। संपूर्ण विरोधी बना रहे हैं, गंदगी से मुक्त कर रहे हैं, महाज्योति परमात्मा से सुंदर वो पवित्रता के किरणों को अपने अंदर समा लीजिए। और आप महसूस करें सुख की किरणें मेरे अंदर समा रहे हैं, मैं संपूर्ण सुखी बन गया। अब परमपिता परमात्मा को अपने समक्ष महसूस करके उनको धन्यवाद करें। हे पिता, आपका शुक्रिया। आज से मैं ऐसे ही रोज अनुभव करूंगी। शुक्रिया पिता, बहुत बहुत दिल से मैं आपकी आभार हूं। ऐसे ही अपने आप को संपूर्ण समर्पण महसूस करें। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। आपने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस कराया कि हम सब अपने मन से कैसे ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, कैसे उनके प्रति अपना समर्पण दिखा सकते हैं और कैसे समर्पित होकर उनसे वो सारी शक्तियां ले सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर अनुभूति रही कि हम आनंद से अपने आप को भर लें, सुख से अपने आप को भर लें। और जब हम ईश्वर के आगे समर्पण कर देते हैं तो ईश्वर बेहतर ख्याल रख देता है और हमें भरपूर कर देता है। और ये अभ्यास हम दिन भर में जब भी समय मिलेगा करते रहेंगे, मगर आज आप खास लाइव जुड़कर अपनी मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
बहुत धन्यवाद
दोस्तों। आज हमने संपूर्ण योग के इस 10वें दिन बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी है। आज पतंजलि योग के सूत्रों में नियम के आखिरी सूत्र को हमने सीखा और उसमें वो था आत्मनिवेदन। जब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो छोटे बच्चों की तरह अपने माता पिता को जैसे वो चीजें समर्पित कर देते हैं, वैसे हम भी आत्मनिवेदन करते हुए ईश्वर को सब कुछ अर्पित कर दें, कह दें कि हमसे ये नहीं संभलता भगवान, आप संभालिए। और ईश्वर संभालेंगे तो फिर बेहतर ही संभालेंगे, बस हमें वो निवेदन करना आना चाहिए। तो जब भी अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है तो बिना शर्माएं, बड़े ही उमंग उत्साह के साथ हाथ ऊपर उठाएं और ईश्वर आपके हाथों को आगे ले जाएगा। तो कल हम फिर जुड़ेंगे, कल के कार्यक्रम में हम योगाचार्य हरीश वैद्य जी से कुछ और चीजें जानेंगे, योगासनों के ऊपर कल चर्चा भी होगी, कल एक नया योगासन सीखेंगे और फिर मेडिटेशन भी होगा। कल जुड़ना न भूलें हमारे साथ संपूर्ण योग में। आज जो कुछ भी आप हमारे साथ आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, ओम शांति।